आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज हम आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 20 डिस्कस करेंगे। आज से पहले हमने दो पोर्शंस में इस चैप्टर के आधे पार्ट को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने देखा कि हमारे एंशिएंट इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर खुद ही दर्शाता है कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, तो हमें इस पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना, केवल अपने एंशिएंट इंडिया की जो इकोनॉमी है यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती है, इसका मतलब मैंने आपको समझाया था कि कैसी आमदनी और फिर जो प्रोडक्शन होता है उसकी खपत कैसे होती है। मतलब ये काइंड ऑफ एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन और सेविंग्स को पढ़ते हैं कि हम कितना उत्पादन करते हैं, कितना हम खपत करते हैं और कितना हम बचत करते हैं। तो बच्चों, इसमें हमें एंशिएंट इंडिया की इकोनॉमी पढ़ना है। अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने हमारे एंशिएंट इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट किया। हमारी इंडिया को पहले हम सोने की चिड़िया क्यों बुलाते थे, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स ने सोने की चिड़िया को बदल दिया एक गरीब देश ने। इसके बाद बच्चों, हमने इसके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को देखा कि एंशिएंट इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या रोल था, कैसे एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती थी, फिर कैसे जो इंडस्ट्रीज थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो शहरों में लगाई जाती थी, वो सब कैसे हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करती थी। इसके बाद हमने ट्रेड्स को भी देखा कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या था। इसके बाद बच्चों, हमने स्टार्ट किया था कि हमारे एंशियंट टाइम में जो मेजर रूट्स हुआ करते थे, यानी वो रास्ते जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के द्वारा फॉलो किए जाते थे, तो उन रूट्स का नाम क्या था। इसके बाद बच्चों, हमने दो मेन व्यापार का सिस्टम देखा था, एक था देशी व्यापार और दूसरा था विदेशी व्यापार। हमने समझा कि देशी व्यापार वो होता है जो हमारे देश के अंदर होता है, और विदेशी व्यापार जो हमारे एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे एंशिएंट इंडिया में जो देशी व्यापार होता था बच्चों, उसमें दो प्रमुख मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। इसके बाद हमने इन दोनों पथों को बारीकी से देखा कि ये पथ कहाँ से होकर कहाँ गुजरते हैं, यानी कि उत्तरापथ बंगाल से शुरू होता है और कहीं जाकर के अफगानिस्तान या बाल्कन देशों में खत्म होता है। वैसे ही दक्षिणापथ जो है वो सदर्न इंडिया को कवर करता है। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, दक्षिणापथ के दो पार्ट्स हैं। एक जो है वो वेस्टर्न जो घाट्स हैं उनको कवर करता है और एक सदर्न इंडिया को नदन पार्ट से कनेक्ट करता है। इसके बाद बच्चों, हमें देखना है कि प्राचीन भारत के जो विदेशी व्यापार थे, इनमें कौन कौन से मार्ग थे, या फिर ये विदेशी मार्ग कैसे काम करते थे। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 146 पर दिया गया अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार, जिसमें लिखा है, हम यह पढ़ चुके हैं कि औद्योगिक दृष्टि से भारत 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत ही अधिक उन्नत अवस्था में था। यहाँ के शिल्पकार न केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, बल्कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ से वस्तुओं का निर्यात भी करते थे। मलमल, छीट, जरी के वस्त्र, लोहे व इस्पात की वस्तुएं, तंबाकू, नील, शॉल, रेशम व रेशमी वस्त्र एवं गरम मसालों का भारत से काफी मात्रा में निर्यात किया जाता था। इसके बदले विदेशी व्यापार हमें जवाहरात, सोना तथा चांदी देते थे। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि प्राचीन काल में भारत का विदेशी व्यापार दुनिया के अनेक देशों से था, जिसमें मुख्य है बेबीलोन, मिश्र, जावा, सुमात्रा, रोम आदि। मध्य भारत के जंगलों से जहाज बनाने के लिए लकड़ी निर्यात की जाती थी। खेतड़ी, राजस्थान की खादानों से तांबा भेजा जाता था, मेवाड़ से जस्ता भेजा जाता था, हीरे जवाहरात, रेशम के कपड़े व अन्य जवाहरात रोम भेजे जाते थे। काली मिर्च की यूरोप में बहुत मांग थी। फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित नगर तांबा, चंदन तथा सागवान खरीदते थे। तो हमें इस पैराग्राफ से ये जानने के लिए मिलता है कि हमारे एंशिएंट इंडिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करते थे उसमें, और प्लस 19वीं सदी के जो ट्रेड हुआ करते थे उसके स्टार्टिंग में, मतलब इसके बीच में जो ट्रेड हुआ था बच्चों, वो क्यों बहुत उन्नत अवस्था में था और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनका हम व्यापार किया करते थे। तो इसमें लिखा है कि जो शिल्पकार हुआ करते थे, जिनको हम इंग्लिश में स्मिदर्स कहते हैं, वो अपनी आवश्यकताओं के लिए तो चीजें बनाते ही थे, यानी कि उनकी जो रोजाना की चीजें होती थी उनका मैन्युफैक्चरिंग करते थे, प्लस वो ऐसी भी चीजें प्रोड्यूस करते थे जिनका वो एक्सपोर्ट करके अच्छा इनकम अर्न कर सके। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका बहुत डिमांड था एक्सपोर्टिंग सिस्टम में। बच्चों वो चीजें क्या थी ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो वो चीजें थी मलमल, छीट, जरी के वस्त्र। मलमल आप सभी जानते हैं कि हमने देखा है लास्ट पैराग्राफ में कि ये बांग्लादेश के ढाका में प्रोड्यूस होता है। छीट के बारे में भी आप सभी जानते ही होंगे। जो जरी के वस्त्र होते हैं वो कपड़ों पर एक बारीक डिजाइन को हम बोलते हैं। उसी के साथ साथ लोहा और इस्पात की जो चीजें बनती थी, यानी आयरन ओर्स की जो चीजें बनती थी, वो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स में बनती थी, जिसकी वजह से उनका डिमांड बहुत हाई रहता था। प्लस बच्चों हमारी कंट्री से एक और बहुत स्पेशल चीज एक्सपोर्ट हुआ करती थी जिसको हम तंबाकू के नाम से जानते हैं। कई पार्ट्स में हम इसको खैनी के नाम से भी जानते हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा हमारे वहाँ के बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो नील की खेती होती थी, यानी कि वो रंग जिसके इस्तेमाल हम कपड़ों को कलर करने के लिए करते थे, इसका भी बहुत हाई डिमांड था। इसके बाद जो शॉल हुआ करती थी बच्चों, जो हम ठंडी में यूज करते हैं, क्योंकि वो ठंड प्रदेश होते थे, यूरोप हो गया या फिर अमेरिका हो गया, तो वो ठंडे प्रदेशों में शॉल की भी बहुत अच्छी डिमांड थी, जिसकी वजह से शॉल का एक्सपोर्ट अच्छा होता था। इसके साथ साथ रेशम, यानी कि जो सिल्क होता है, सिल्क और सिल्क से बने कपड़े, और इसके बाद जो गरम मसाले होते हैं, यानी कि स्पाइसेस, जो मोस्टली केरला के कोरोमंडल एरिया से पाए जाते हैं, इन सभी का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। और इसी के एक्सचेंज में जो हमारे विदेशी व्यापारी होते थे वो हमें जवाहरात, सोना और चांदी देते थे। इसका मतलब ये कि हमारे देश में सोना और चांदी की खदानें बहुत ज्यादा नहीं थीं, लेकिन फिर भी सोना और चांदी का जो प्रपोर्शन था वो कंपैरेटिवली हाई था। और इसका रीजन यही था बच्चों, क्योंकि हमारे उस टाइम पर भी एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न इंडिया के जो टाइम पीरियड रहा है, उस टाइम पीरियड में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसके साथ साथ हमें ऐसे एविडेंसेस भी मिलते हैं जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया था उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था वो बहुत सारे देशों के साथ कनेक्टेड था। और अगर मेन तौर पे, मुख्य तौर पे बात की जाए तो मेनली ये बेबीलोन से कनेक्टेड था, मिश्र जिसको आज हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं इससे कनेक्टेड था, जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया का रीजन है उससे कनेक्टेड था। इसके साथ साथ रोम से भी हमारे एंशिएंट इंडिया में ट्रेड काफी अच्छी क्वांटिटी में हुआ करता था। इसके बाद हमें इस पैराग्राफ से ये जानकारी मिलती है कि हमें मध्य भारत से, यानी कि जो सेंट्रल इंडिया का रीजन है, अब आपको ये मैप में ढूंढना होगा कि सेंट्रल इंडिया के रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। तो मैं आपको हिंट दे दूं कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो भी एरिया है वो हमारी सेंट्रल इंडिया में इंक्लूड होता है। और अगर आप मैप में देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी पाई जाती है, और इसी वजह से यहाँ से जंगलों से हम लकड़ी एक्सपोर्ट करते थे जिससे कि जहाज बनाई जाती थी। इसके बाद राजस्थान का खेतड़ी एक जिला है और इसी खेतड़ी नाम के खादान से बच्चों कॉपर का प्रोडक्शन होता था, यानी कि कॉपर का एक्सपोर्ट हम राजस्थान से करते थे। और जस्ता एक नाम की चीज होती थी, जस्ता को हम मेवाड़ से एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा हम हीरे, जवाहरात, रेशम के कपड़े और भी बहुत सारे जवाहरात रोम भेजा करते थे। और हमें इसका पता इसलिए चलता है कि जो डिजाइन्स हमें यहाँ मिलती हैं, वो सारी हमें रोमन एम्पायर में भी देखी गई हैं। इसके अलावे हमें काली मिर्च का बहुत ज्यादा मांग था यूरोप में, क्योंकि वहां पर सर्दी वाला इलाका है और काली मिर्च हमें गर्मी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते थे। और बच्चों, पर्शियन गल्फ जो है, इसके जो सदर्न कोस्ट है, इस पर जो नगर स्थित है, यानी कि वो एरिया जो पर्शियन गल्फ के सदर्न कोस्ट पर लोकेटेड है, वहां पर तांबा यानी कॉपर, चंदन यानी सैंडलवुड और सागवान, इन सभी का बहुत ज्यादा डिमांड था और वहां के लोग ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खरीदते थे। अब उनका कुछ रीजन रहा होगा, यहाँ पर रीजन तो मेंशन नहीं किया, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि पर्शियन गल्फ के जो सदर्न कोस्ट के इलाके थे, वहां पर इन सभी चीजों की खरीदारी बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो बच्चों, हमने इस पार्ट में देखा कि हमारे प्राचीन भारत का जो व्यापार था वो कौन कौन से देशों से होता था और किन किन चीजों से हम व्यापार करते थे। अब हम अपने आगे के पैराग्राफ में ये देखेंगे कि विदेशी व्यापारी जो मार्ग थे, उनमें मुख्य मार्ग कौन कौन से थे, वो मार्ग कौन कौन सी जगह से होकर के गुजरते थे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों, आप खोलिए पेज नंबर 146। इसमें पिंक कलर के इंक से लिखा हुआ हमारा टॉपिक है प्राचीन विदेशी व्यापारिक मार्ग, जिसमें लिखा है इथियोपिया (अफ्रीका) से हाथी दांत व सोना भारत आता था। बाहर से हमारे देश में आयात होने वाली सूची में घोड़े प्रमुख थे। तीसरी ईसवी सदी जब रोम का साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तो भारत के व्यापारी पूर्व एशिया से ज्यादा व्यापार करने लगे। सुवर्णद्वीप, कंबोज आदि स्थानों पर भारतीय बस्तियां बसने लगी। चीनी लेखकों ने हिंद चीन व हिंदेशिया में भारतीय व्यापारियों की बस्तियों का उल्लेख किया है। पूर्व में कलिंग देश के व्यापारी भी पूर्वी एशिया में जाते थे। प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के रेशमी व सूती उत्पादों का ही दबदबा था। अर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीजें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊंटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तान के पार ले जाते थे। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः भूमार्ग से तथा हिंद महासागर, अरब सागर के रास्ते समुद्री मार्ग से अरब देशों तक होता था। विदेशी व्यापारियों द्वारा समुद्री रास्ते की खोज के बाद तो अनेक पाश्चात्य जगत की कंपनियां भारत के साथ व्यापार करने लगी, जिसमें मुख्यतः फ्रांस, डच एवं ब्रिटिश कंपनियां थीं। तो बच्चों, हमें इस पैराग्राफ में ऐसा बताया गया है कि इथियोपिया नाम की जो जगह है वो आज अफ्रीका में है, और वहीं से हमें हाथी के जो दांत होते हैं बच्चों और सोना, इन दोनों की सप्लाई आती थी। आप सभी को पता होगा कि हाथी के दांत आज भी हमारी इकोनॉमी में यानी बाजार में बहुत हाई रेट्स पर बिकते हैं, और आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा कि हाथी के दांत स्मगल होते हैं, यानी कि हाथी के दांत को निकालना कोई बहुत बच्चों का खेल नहीं है, और ये अक्सर वहीं से पाया जाता है जहां पर हाथी लार्ज क्वांटिटी में मिलते हों। लेकिन हमारे भारत में हाथियों की क्वांटिटी है तो ज्यादा, लेकिन इतनी नहीं है कि हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। कई बार हमने देखा है कि जो हाथी के दांत हैं उनका यूज होता है मेडिसिन्स बनाने में, इसका मतलब कि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। कई बार बच्चों हमने देखा है कि हाथी के दांत की अंगूठी बनती है, यानी लोगों का सुपरस्टिशन होता है रिंग्स पर, और आपने देखा होगा कि उन रिंग्स को यूज करके लोग काफी अच्छा महसूस करते हैं। इसके बाद हमने देखा है कि ब्लैक मैजिक करने में भी हाथी के दांत का यूज होता है। तो इसीलिए बच्चों जो हाथी के दांत थे और सोना यानी गोल्ड, गोल्ड आप सभी जानते हैं, आप सभी के घर में पाया जाता है, भले ही किसी के घर में छोटा पाया जाता होगा, किसी के घर में बड़ा पाया जाता होगा, लेकिन ये दोनों भी बहुत ज्यादा सप्लाई में आते थे। तो कहाँ से आते थे बच्चों? ये इथियोपिया से आते थे। इथियोपिया अफ्रीका में है। आप एक बार जब घर जाइएगा तो एटलस खोल करके अफ्रीका का मैप देखिएगा, और ये ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि इथियोपिया के आसपास में कौन कौन से देश मौजूद हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट में घोड़ों का भी सप्लाई जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा रहा है, यानी कि हम सप्लाई नहीं करते थे, हम इंपोर्ट करते थे। इसका मतलब बाहर के देशों से हमारे देश में घोड़े भी आते थे, क्योंकि हमारे देश के जो घोड़े होते हैं बच्चों, माना जाता है कि उनकी प्रजाति अच्छी नहीं होती है, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि सेंट्रल एशिया का जो एरिया है वहां से हम घोड़ों का इंपोर्ट किया करते थे। इसके बाद बच्चों इसमें ऐसा जानकारी दिया गया है कि 3rd century ईस्वी में यानी कि 3rd century AD में जब रोमन एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लग गया था, तो हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करने में कोई खास बेनिफिट नहीं होता था, और इसी वजह से हमारे इंडियन ट्रेडर्स ने धीरे धीरे ईस्टर्न एशिया के जो ट्रेडर्स थे उनके साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, और इसी वजह से बच्चों कई सारी जगहों पर भारतीय जो लोग होते हैं उन भारतीय लोगों का माइग्रेशन स्टार्ट होने लग गया। माइग्रेशन यानी कि एक देश से दूसरे देश की तरफ मूव करना। कभी कभी ये माइग्रेशन का रीजन होता है बच्चों किसी देश में अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तभी हम देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लोग शिफ्ट करते हैं। इसका हम प्राइम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान का जो एरिया है वहां से लोग जनरली दिल्ली की तरफ मूव करके जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें जॉब की तलाश होती है और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तलाश होती है। तो वैसे ही हमारे एंशिएंट इंडिया में जब ट्रेडर्स ने रोमन एम्पायर को छोड़ करके ईस्टर्न एशिया से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर भारतीय बस्तियां बसने लगी, और वो जगह कौन कौन सी थी बच्चों? तो बच्चों वो जगह थी सुवर्णद्वीप और कंबोज। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह थी जिनके बारे में आपको बाद में जानने को मिलेगा। तो आज आप इतना केवल जान लीजिए कि सुवर्णद्वीप और कंबोज नाम की जो जगह थी वहां पर भारतीय बस्तियां बसने लगी। और बच्चों ऐसी बस्तियों का जो जिक्र है वो हमने कई बार देखा है कि चीनी जो लेखक होते हैं या हम हिंदी और चीनी लेखक, इन सभी के जो व्यापारी होते हैं, लेखक होते हैं, ये सभी इन बस्तियों का उल्लेख करते हैं कि कैसे भारत के लोग दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। कभी कभी ये माइग्रेशन बच्चों टेम्पररी होता है कि हाँ चलो सीजन है तो हम जॉब के लिए जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी ये परमानेंट भी होता है, यानी लोग अपनी प्रॉपर्टीज खरीद कर वहीं पर सेटल हो जाते हैं। तो हमें ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं चीनी लेखकों के द्वारा। और जो बच्चों कलिंग नाम की जगह है जिसके बारे में हमने मौर्यन एम्पायर वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिसके युद्ध के बाद अशोका ने युद्ध न करने का फैसला लिया। बिल्कुल हम उसी कलिंग की बात कर रहे हैं। कलिंग के लोगों को भी हमने देखा है कि वो लोग भी पूर्वी एशिया में व्यापार करने जाते थे। बच्चों, हमने अभी तक ये समझा कि हम कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट करते थे और हमारे देश के लोग सुवर्णद्वीप और कम्बोज जैसी जगहों पर माइग्रेट करते थे। इसके बाद हमें अगले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारे एंशियंट इंडिया में बहुत सारी चीजें जो थी बच्चों, वो इंटरनेशनल मार्केट में उस टाइम पर डोमिनेंस में थी। तो चीजें क्या हैं? वो चीजें हैं सिल्क यानी रेशम और कॉटन के कपड़े। कपड़े कह लीजिए या फिर कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, ये रेशम और सूती कपड़े या इनके उत्पाद, ये सभी बहुत दबदबे में थे। बच्चों, जो अर्मीनियन और फारसी सौदागर होते थे यानी व्यापारी होते थे, वो पंजाब से अफगानिस्तान जाते थे, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीजें लेकर के जाते थे। यानी आप सोच सकते हैं कि ये लोग पंजाब, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते एक्सपोर्ट करते थे। और जो कपड़े हम यहाँ बनाते थे यानी भारत के जो कपड़े थे, वो बहुत महीन कपड़े होते थे और इसी की वजह से इनका डोमिनेंस था पूरे हमारे मार्केट में। और इनके जो थान होते हैं बच्चों, थान यानी कि बल्क होता है, उसको हम ऊंट की पीठ पर लाद करके हमारे जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसकी बाउंड्री से पहाड़ों के दर्रों से लेकर रेगिस्तान को पार करते हुए जाते थे। और बच्चों, इसके आगे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गुजरात का जो कोस्टल एरिया था, उसमें एक बहुत पॉपुलर जगह थी जो आज भी कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उस जगह का नाम है बच्चों सूरत। शायद आप में से किसी ने इस जगह को सुना हो। तो बच्चों, यही वो सूरत बंदरगाह था जिसके जरिए दो खाड़ियां या दो सागर, जिनको हम कह सकते हैं, वो जुड़े हुए थे। यानी जो भारत की खाड़ी थी और लाल सागर था, इसके जो बंदरगाह होते थे वो सूरत के थ्रू ही जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे। और बच्चों, मछलीपट्टनम नाम की एक जगह है जो कि कोरोमंडल कोस्ट पर है, और हुगली है बच्चों बंगाल में। इन्हीं दोनों के माध्यम से हमने पूरे सदर्न और ईस्टर्न एशिया के पोर्ट्स को कनेक्ट किया। यानी कि कोरोमंडल कोस्ट मछलीपट्टनम वाली जगह जो थी उसके द्वारा, और हुगली जो बंगाल में है उसके थ्रू हमने पूरे सदर्न और ईस्टर्न एशिया को कनेक्ट किया था ट्रेड करने के लिए। इसके बाद बच्चों, हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो भारत का विदेशी व्यापार होता था वो जनरली लैंड के थ्रू होता था और हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन और अरेबिक ओशियन के थ्रू भी होता था। इसके बाद हमें ऐसे भी एविडेंसेस मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो अरब कंट्रियां हैं, जी हाँ, वही अरब कंट्री जहां पर आदमी हमेशा कवर्ड रहता है, प्लस जो औरत होती है वो हमेशा बुरखे में रहती है, वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है बच्चों। तो उन अरब कंट्रीज से भी हम ट्रेड किया करते थे। और अरब देशों को पहुंचने के लिए हम लैंड का यूज भी करते थे, इसके साथ साथ इंडियन ओशियन और अरेबिक ओशियन का भी यूज करते थे। इसके बाद बच्चों, हमने देखा कि जो फॉरेन ट्रेडर्स होते थे वो ओशियन के थ्रू यानी समुद्री रास्ते के द्वारा हमारे इंडिया में आकर के धीरे धीरे कंपनियां खोलने लग गए। इसका मतलब कि जो वास्को डी गामा थे, उनके जैसे बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स थे जो अपना देश छोड़ करके नए देश की तलाश में नाव पर सालों साल बैठे रह जाते थे और फिर दूसरी कंट्रीज में जाकर के लैंड करते थे और वहां पर कंपनी खोलकर ट्रेड करते थे। और बच्चों, जो कंपनी होती थी वो और कुछ नहीं होती थी बल्कि वो गोडाउन टाइप का होता था। यानी कि वो कोस्ट पर या पोर्ट्स पर अपनी कंपनियां ओपन करते थे, अपनी फैक्ट्रीज या फिर गोडाउन कह लीजिए इसको ओपन करते थे, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से अपना सामान ले जाकर वहां पर कलेक्ट कर सकें, और जब शिप फ्री हो तो वो शिप के थ्रू उसको अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकें। और इन्हीं में से जो मेन कंट्रीज थी बच्चों, वो थी फ्रांस, डच और ब्रिटिश कंपनियां। यानी कि वो सारी कंपनियां जिन्होंने हमारे देश में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल भी किया है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि तीन कंपनियां बहुत मेन थी, कौन कौन सी, फ्रांस की, डच की और ब्रिटिश कंपनियां। कभी कभी तो ये कंपनियां प्राइवेट होती थी, यानी कि किसी इंसान का मन हुआ कि मुझे दूसरे देश जाना है, उसने कुछ लोगों से पैसे कलेक्ट किए और अपना एक ग्रुप बनाकर चले गए। और कभी कभी ये कंपनियां बच्चों सरकारी होती थी, यानी कि सरकार उनको फंड देती थी कि आप दूसरे देश में जाइए और वहां से व्यापार करके अपने देश में ले आइए। लेकिन अभी हमारे इस चैप्टर के लिए इतनी जानकारी बच्चों काफी है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। लेकिन हम इस चैप्टर को बंद करने से पहले चलिए देखते हैं कि हम आयात और निर्यात किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप पेज नंबर 146 पर अपना ध्यान लगाइए। इसमें एक ग्रीन कलर के बॉक्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें लिखा है आयात निर्यात किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसमें लिखा है कि विदेशी बाजारों से माल खरीदने को माल का आयात करना कहते हैं, तथा विदेशी बाजारों में अपने देश के माल को बेचना निर्यात कहलाता है। इसका मतलब कि बच्चों, आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप दो फ्रेंड्स हैं, आपके पास पेन है, आपके फ्रेंड के पास कॉपी है, कॉपी के कुछ पेजेस की जरूरत है आपको, और फिर आपके फ्रेंड को आपके पेन की जरूरत है। तो जब आप कुछ पेन्स के एक्सचेंज में अपने फ्रेंड से कुछ पेजेस लेते हैं, तो आप समझिए कि आप पेजेस का आयात कर रहे हैं, यानी उनको घर ला रहे हैं, उसको हम इंग्लिश में इम्पोर्ट कहते हैं। और जब आप उसके एक्सचेंज में उसको पेन दे रहे हैं बच्चों, तो आप समझ लीजिए कि आप उस पेन का निर्यात कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो उसका आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हम इकोनॉमिक्स के टर्म में भी ऐसे ही कहते हैं कि जब हम कोई चीज अपने घर लेकर आते हैं तो हम उसको बोलते हैं आओ आओ, इसका मतलब आयात कर रहे हैं, आयात, अ से आयात, आ से आओ। और वैसे ही जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो उसका हम निर्यात कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में हम एक्सपोर्ट कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये आयात और निर्यात दोनों बढ़िया से समझ में आए होंगे। इसके बाद हमें पेज नंबर 146 के एंड में ही येलो कलर के बॉक्स में एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में लिखा है बच्चों, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिसमें प्राचीन काल में भारत की वस्तुओं की विदेशी बाजारों में मांग रहती थी। इसका मतलब कि बच्चों, अभी तक आपने इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसको एक बार और रीड करिए और फिर उन सारे पॉइंट्स को मार्क करिए जिसका रिलेशन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से है। इसके बाद बच्चों, आपको इस एक्टिविटी में स्पेसिफिकली उन सारी चीजों का लिस्ट बनाना है जिसका विदेशी व्यापार में या फिर विदेशों में बहुत ज्यादा भारी मांग रहा। हम अगर प्राइम एग्जांपल ले बच्चों, तो हमने अभी तक देखा कि कॉटन और सिल्क, ये दोनों बहुत ज्यादा डिमांड में थे। और इसके साथ साथ बांग्लादेश की जो राजधानी है आज ढाका, उसी ढाका में मलमल का मैन्युफैक्चरिंग होता था। और हमने देखा कि इजिप्ट की जो ममीज होती थी, उनको भी मलमल के कपड़े में रैप करके रखा जाता था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मलमल भी बहुत डिमांड में था। इसी के साथ हमारी ये एक्टिविटी हो जाएगी कंप्लीट। बच्चों, इसके बाद हमें पेज नंबर 147 पर भी एक एक्टिविटी दी हुई है। तो आप पेज नंबर 147 ओपन करिए और इस गतिविधि को पढ़िए। इसमें लिखा है, उपरोक्त मानचित्र देखकर बताएं कि भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले जल व थल के व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे। इसका मतलब कि बच्चों, आपको 147 पेज नंबर पर ही वर्ल्ड का कुछ पार्ट का मैप दिया है। इसमें आपको जो मेन रूट्स हैं जिसके थ्रू इंडिया कनेक्ट होता था बाकी सारी कंट्रीज से, उनकी लिस्ट बनानी है कि हम लैंड के थ्रू या ओशियन के थ्रू कैसे हम अपने विश्व से जुड़े हुए थे, या वो व्यापारिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो ये करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, क्योंकि आपको इस मैप में दो मार्ग दिखाए हैं, एक समुद्री मार्ग और एक भूमार्ग, यानी जो लैंड से होकर के गुजरता है। तो आप केवल अपने टीचर्स की हेल्प से इस मैप को बढ़िया से ऑब्जर्व कीजिए और व्यापारिक मार्गों को नोट डाउन कीजिए। और इसी के साथ बच्चों, हमारा आज का ये चैप्टर जिसका नाम है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, यहीं पर कंप्लीट होती है। तो बच्चों, आज हमारे पास समय कम है, इस वजह से हम ग्लॉसरी और एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रीड करिए, इसमें दी गई सारी एक्टिविटीज को करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो अपने टीचर्स को कंसल्ट करिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।